हेत्वाभास के भेद पर भी पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें पहला भेद था आश्रय असिद्ध नाम का हेत्वाभास। वह असिद्ध नामक हेत्वाभास तीन प्रकार का बताया गया, आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध और व्याप्यत्वासिद्ध। इसमें आश्रयासिद्ध नाम का जो हेत्वाभास है उसको हम लोगों ने पिछले पाठ में पढ़ा। उसमें एक बड़ी ही अच्छी बात बताई गई थी, भाष्य का उल्लेख करके कहा गया था कि नानुपलब्धे न निर्णीते अर्थे अपितु संदिग्धे अर्थे न्याय प्रवर्तते, कि न्याय की जो प्रवृत्ति होती है, अनुमान प्रमाण का जो प्रयोग किया जाता है, वह संदिग्ध अर्थ रहने पर प्रयोग किया जाता है। अगर अर्थ निर्णीत हो, पहले से निश्चित हो, अथवा वह अर्थ अनुपलब्ध हो, होता ही न हो, तो अनुपलब्ध अर्थ और निर्णीत अर्थ में अनुमान का प्रयोग नहीं होता, केवल संदिग्ध अर्थ रहने पर ही अनुमान का प्रयोग होता है। यह न्याय दर्शन भाष्य की पंक्ति थी, नानुपलब्धे न निर्णीते अर्थे अपितु संदिग्धे अर्थे न्याय प्रवर्तते। तो आश्रयासिद्ध नाम का जो भेद है असिद्ध हेत्वाभास का, उसको पिछले पाठ में देखा। आज शुरुआत करते हैं स्वरूपासिद्ध नाम के हेत्वाभास से। फिर से मैं बता दूं कि ये चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं, तो इसलिए केवल स्मरण यहाँ पर जो है आपको करना है। तो स्वरूपासिद्धस्तु स्व उच्यते यो हेतु आश्रय न अवगम्यते। स्वरूपासिद्ध नाम का हेत्वाभास हुआ है जहाँ पर हेतु आश्रय में अवगत न होता हो। हेतु को आश्रय में रहना चाहिए, तभी जो है ना वह हेतु सद्हेतु होता है। अगर हेतु आश्रय में नहीं रहे, हेतु आश्रय में है ऐसा ज्ञात न हो, तो वहाँ पर असद हेतु होगा, माने हेत्वाभास होगा। यथा सामान्यम अनित्यम कृतकत्वात्, ऐसा अगर हेतु वाक्य हो, अनुमान वाक्य हो कि सामान्यम अनित्यम, सामान्य माने जाति, तो जाति जो है वह अनित्य होती है, क्योंकि कृतकत्वात् कृतकत्व होने के कारण, कृतकत्व माने कार्यत्व होने के कारण। तो यहाँ पर कृतकत्व रूप जो हेतु है वह आश्रय जो है सामान्य, उसमें नास्ति है, वह उसमें नहीं है, क्योंकि सामान्य जाति जो है वो नित्य होती है, तो उसमें कृतकत्व कार्यत्व कैसे रहेगा, नहीं रहेगा। भागा सिद्ध अपि स्वरूपा सिद्ध एवं, ताकि स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास जिसको हम कहते हैं, वही चीज भागा सिद्ध नाम के हेत्वाभास में भी है, इसलिए दोनों को हम एक ही हमें दोनों को एक ही समझना चाहिए। भागा सिद्ध अपि स्वरूपा सिद्ध एव, माने भागा सिद्ध नाम का जो हेत्वाभास है वह भी स्वरूपा सिद्ध ही होता है। अब भागा सिद्ध का उदाहरण देते हैं, भागा सिद्ध का मतलब थोड़ा तो आप शब्द से समझ ही जाएंगे। भाग में असिद्ध, माने पूरे में हेतु असिद्ध न हो, पूरे आश्रय में हेतु असिद्ध न हो, लेकिन आश्रय के थोड़े से भाग में, थोड़े से हिस्से में जो है अगर हेतु असिद्ध हो तो वह भागा सिद्ध होगा। यथा पृथिव्यादयः चत्वारः परमाणवो नित्याः गंधवत्वात्, यहाँ पर जो है ताकि पृथ्वी आदि जो चार परमाणु हैं, पृथ्वी जल तेज वायु, पृथ्वी जल तेज वायु, ये हो गए पृथ्वी आदि चार, उसमें परमाणु लगा दीजिए, पृथ्वी परमाणु, जल परमाणु, तेज परमाणु और वायु परमाणु, तो ये चारों परमाणु जो है नित्याह नित्य होते हैं, गंधवत्वात् गंधवत्व होने के कारण। तो यहाँ जो गंधवत्व हेतु बताया है वह भागा सिद्ध हेतु है, अर्थात जो पक्ष है आश्रय जो है पृथ्वी आदि चार परमाणु, उसमें केवल पृथ्वी परमाणु में ही जो है गंधवत्व होता है, बाकी जो तीन परमाणु हैं हैं, जल परमाणु, तेजह परमाणु और वायु परमाणु, उसमें जो है दंडवत हेतु होता नहीं है। तो पक्ष के एक भाग में, एक हिस्से में यह गंधवत्व हेतु नहीं रहता है, और पृथ्वी परमाणु में जो है यह गंधवत्व हेतु रहता है। तो पूरे पक्ष में न रहे हेतु तो भी वह जो है स्वरूपासिद्ध हेतु है, और पक्ष के एक हिस्से में, एक भाग में हेतु न रहे तो वह भी जो है स्वरूपासिद्ध हेतु है, भाग उसी का नाम भागासिद्ध हेतु है। तो यहाँ पर पृथ्व्यादेह चत्वार परमाणवो नित्या गंधवत्वात्, इस वाक्य में गंधवत्व जो हेतु है वह पक्षीकृतेषु सर्वेषु नास्ति। वो पक्ष, पक्षीकृत जो सर्व हैं, सारे हैं, चार हैं, उसमें नास्ति है, उस चारों में नहीं है। पृथ्वी मात्र वृत्तित्वात्, क्योंकि वह जो है पृथ्वी मात्र वृत्ति है, केवल पृथ्वी में गंधवत्व रहता है। अतएव भागे स्वरूपासिद्धः, इसलिए भाग में स्वरूपासिद्ध यह हेत्वाभास है। भाग में माने एक हिस्से में, एक देश में स्वरूपासिद्ध हेतु हेत्वाभास है। तथा विशेषणासिद्ध विशेष्यासिद्ध असमर्थ विशेषणासिद्ध समर्थ विशेष्यासिद्धादय स्वरूपासिद्ध भेदाः। देखिए, पहले स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास बताया, फिर कहा कि भागासिद्ध नाम का जो हेत्वाभास है वह भी स्वरूपासिद्ध ही है। अब उस स्वरूपासिद्ध के जो है ना चार भेद यहाँ पर बता रहे हैं, विशेषणासिद्ध विशेष्यासिद्ध असमर्थ विशेषणासिद्ध और असमर्थ विशेष्यासिद्ध। ये सब बड़े आसान हैं सुनने में आपको लग रहा होगा, लेकिन पढ़ने में और समझने समझाने में बड़ा आसान है। तो चलिए एक एक उदाहरण करके देखते हैं। पहला जो विशेषणासिद्ध हेत्वाभास है उसका उदाहरण दिया, यथा शब्दो नित्यो द्रव्यत्वे सति अस्पर्शत्वात्। माने शब्द नित्य है, क्यों नित्य है तो उसमें हेतु दिया द्रव्यत्वे सति अस्पर्शत्वात्। इसमें द्रव्यत्व होते हुए अस्पर्शत्व रहता है। एक चीज यहाँ जान लीजिए कि जिसमें सति लगा हो ना हेतु में, तो सति तक का जो भाग होता है ना उसको विशेषण कहते हैं, और सती के बाद जो रहता है भाग हेतु का उसको विशेष्य कहते हैं। अब जैसे यहाँ द्रव्यत्वे सती अस्पर्शत्वात् लिखा, तो द्रव्यत्वे सती ये सत्यंत जो है, माने सती जिसके अंत में हो, ये सत्यंत जो है द्रव्यत्वे सती, ये विशेषण कहलाएगा, और सती के बाद जो है अस्पर्शत्वात् यह जो है विशेष्य कहलाएगा। इस तरह से आगे हमें जो है ना पढ़ने में समझने में आसानी हो जाएगी। इस चीज़ को अगर ध्यान में रखेंगे कि हेतु अंश में कौन विशेषण अंश होता है और कौन विशेष्य अंश होता है। तो शब्दो नित्यः, शब्द नित्य होता है, उसमें हेतु दिया द्रव्यत्वे सति अस्पर्शत्वात्, माने उसमें द्रव्यत्व भी रहता है शब्द में और अस्पर्शत्व भी रहता है शब्द में, इसलिए शब्द नित्य होता है, ऐसा अनुमान वाक्य का प्रयोग किया। अत्र ही द्रव्यत्व विशिष्टम अस्पर्शत्वम हेतु, यहाँ जो हेतु का प्रयोग किया गया है ये किस तरह का हेतु है, तो द्रव्यत्व विशिष्ट अस्पर्शत्व हेतु बताया गया। माने द्रव्यत्व विशेषण से युक्त अस्पर्शत्व ऐसा हेतु कहा गया है। इसमें अस्पृशत्व मात्रम नहीं कहा गया है, केवल ये नहीं कहा अस्पर्शत्वात्, बल्कि द्रव्यत्व विशिष्ट अस्पर्शत्व को हेतु बनाया गया, अर्थात विशेषण का भी प्रयोग है इसमें हेतु में और विशेष्य का भी प्रयोग है इस हेतु में। शब्दे च द्रव्यत्वम विशेषणम नास्ति। अब देखिए, हेतु में विशेष विशेषण दोनों का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पर जो पक्ष है शब्द, उस शब्द में देखिए कि विशेषण अंश नहीं है किंतु विशेष्य अंश है। अस्पर्शत्व जो विशेष्य है वह तो शब्द में रहता है, शब्द का स्पर्श नहीं होता, शब्द का श्रवण होता है, शब्द का स्पर्श नहीं होता। तो अस्पर्शत्व जो विशेष्य अंश है हेतु का, वह तो शब्द में पक्ष में विद्यमान है, किंतु विशेषण अंश जो है द्रव्यत्व अंश, वह द्रव्यत्व अंश शब्द में नहीं होता। वही कहा शब्दे च द्रव्यत्वम विशेषणम नास्ति, शब्द रूपी पक्ष में द्रव्यत्व विशेषण नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है द्रव्य, ये द्रव्यत्व विशेषण शब्द में, तो गुणत्वात्, क्योंकि शब्द तो गुण है और गुण कहाँ रहेगा, किसी द्रव्य में रहेगा ना, इसीलिए शब्दे च द्रव्यत्वम विशेषतम नास्ते, शब्द में जो है द्रव्यत्व विशेषण नहीं होता है गुणत्वा, क्योंकि शब्द जो है गुण है। अतो विशेषण असिद्धा, इसलिए इस हेत्वाभास को हम विशेषणा सिद्ध हेत्वाभास कहेंगे। अर्थात यहाँ पर विशेष्य तो सिद्ध है ना, पक्ष में है, किंतु विशेषण जो है पक्ष में नहीं है, इसलिए इसका नाम पड़ गया विशेषणा सिद्ध हेत्वाभास। न च असत विशेषण द्रव्यत्वे तद विशिष्टम अस्पर्शत्वम अस्ति, कहा कि जब विशेषण इसमें द्रव्यत्व नहीं है, किसमें शब्द में, तो तद विशिष्ट जो अस्पर्शत्व है वो भी नहीं है। विशेषणाभावे विशिष्टस्यापि अभावात्, क्योंकि विशेषण का जहाँ अभाव होता है वहाँ पर विशिष्ट का भी अभाव माना जाता है। अब जैसे दंडवान पुरुषः, ऐसा अगर प्रयोग है तो अगर दंड जो विशेषण है वहाँ और पुरुष है विशेष, तो दंड का अगर अभाव होगा तो दंड विशिष्ट पुरुष का भी अभाव माना जाता है। वही का विशेषणाभावे विशिष्टस्यापि अभावात्, विशेषण के अभाव रहने पर विशिष्ट का भी अभाव होता है। द्रव्यत्व अगर नहीं होगा तो द्रव्यत्व विशिष्ट अस्पर्शत्व भी नहीं होगा। वही आगे का यथा दंड मात्र अभावे पुरुष अभावे वा दंड विशिष्टस्य पुरुषस्य अभावः, जैसे दंड मात्र का अभाव हो अथवा पुरुष का ही अभाव हो तो वहाँ पर दंड विशिष्ट पुरुष का अभाव माना जाता है। तेन सत्यपि अस्पर्शत्व, इसलिए यहाँ पर अस्पर्शत्व सत्यपि माने अस्पर्शत्व शब्द में है भी, तो भी द्रव्यत्व विशिष्ट जो है अस्पर्शत्व हेतु उसका यहाँ अभाव है, अभाव माना जाएगा। जैसे दंडमान पुरुष में माना जाता है, या तो पुरुष न हो तो भी दंडमान पुरुष का अभाव माना जाता है, या दंड न हो तो भी दंडमान पुरुष का अभाव माना जाता है। उसी तरह से यहाँ पे अस्पर्शत्व होने पर भी चूंकि दंडत्व शब्द में नहीं है, इस द्रव्यत्व शब्द में नहीं है, इसलिए द्रव्यत्व विशिष्ट हेतु का अभाव होने से यहाँ पर स्वरूपा सिद्ध जो है हेतु माना जाएगा। जैसे यहाँ पर विशेषणा सिद्ध हेत्वाभास था, उसी तरह से विशेष्या सिद्ध हेत्वाभास है। इसमें क्या होगा कि विशेषण अंश जो हेतु का है वह तो रहेगा पक्ष में, लेकिन विशेष्य अंश नहीं रहेगा। उदाहरण दिया यहाँ, यथा शब्दो नित्यः अस्पर्शत्वे सति द्रव्यत्वात्, उसी को पलट दिया हेतु को, अस्पर्शत्वे सति यह विशेषण है और द्रव्यत्वात् यह विशेष्य है। और इसमें कहा कि शब्द नित्य है क्योंकि उसमें अस्पर्शत्व होते हुए द्रव्यत्व रहता है। अत्रापि विशिष्टो हेतु, यहाँ पे हेतु जो है वह विशिष्ट हेतु है। विशिष्ट हेतु है मतलब अस्पर्शत्व विशेषण से विशिष्ट द्रव्यत्व हेतु है। न च विशेष्याभावे विशिष्टम स्वरूपम अस्ति, यहाँ पर भी विशेष जो द्रव्यत्व है वह तो है नहीं, तो विशेष्य अभाव रहने पर विशिष्ट स्वरूप यहाँ भी नहीं होगा, माने अस्पर्शत्व विशिष्ट द्रव्यत्व का अभाव माना जाएगा। विशिष्टश्च हेतु नास्ति, विशिष्ट हेतु जो है यहाँ पर शब्द में नहीं है। इस तरह से अब तीसरा जो था यहाँ पर भेद असमर्थ विशेषणा सिद्ध नाम का, वो बताते हैं कि यथा शब्दो नित्यो गुणत्वे सति अकारणकत्वात्, कि शब्द नित्य होता है क्योंकि उसमें गुणत्व होते हुए अकारणकत्व होता है। गुणत्व माने शब्द में गुणत्व होता है, ये तो ठीक है, शब्द में गुणत्व तो होता ही है, शब्द गुण है न्याय के मत में। किंतु दूसरा कहा विशेष्य अंश जो कहा वो कहा कि अकारणकत्वात्, अकारणक होने से माने किसी भी कारण से ये शब्द उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा कहा। अत्र ही विशेषणस्य गुणत्वस्य न किंचित सामर्थ्यम अस्ति, अब यहाँ पर जो कहा गया गुणत्वे सति अकारणकत्वात्, इसमें गुणत्वे सति जो विशेषण अंश दिया गया है ना वो बेकार है, वो असमर्थ है। असमर्थ है मतलब व्यर्थ है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वही कहा अत्र ही विशेषणस्य गुणत्वस्य न किंचित सामर्थ्यम अस्ति, यहाँ पर जो विशेषण गुणत्व है गुणत्वे सति अकारणकत्वात् में, उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है माने कोई उसका प्रयोजन नहीं है, वह व्यर्थ है। विशेष्यस्य अकारणकत्वस्य व नित्यत्व साधने सामर्थ्यात्, क्योंकि यहाँ पर विशेष्य अंश जो है अकारणकत्वात्, इसी में जो है ना नित्यत्व साधन में सामर्थ्य है, यही जो है नित्यत्व को सिद्ध कर सकता है शब्द में, ये गुणत्वे सति कहने की जरूरत नहीं है। अतः असमर्थ विशेषणता, इसीलिए यहाँ जो विशेषणता है ये असमर्थ विशेषणता है। स्वरूपासिद्धत्वंतु विशेषणाभावे विशिष्टस्यापि अभावात्, और स्वरूपासिद्ध इसलिए इसको कहा जाएगा क्योंकि विशेषण का यहाँ पर अभाव है, और विशेषण के अभाव रहने पर विशिष्टस्यापि अभावात्, विशिष्ट का भी जो है अभाव यहाँ पर माना जाएगा। आगे प्रश्न उठाते हैं, ननु विशेषणम गुणत्वम तच्च शब्दे अस्ति एव, ताकि अभी आपने कहा कि विशेषण का अभाव होने के कारण यहाँ पर विशिष्ट का अभाव माना जाएगा, लेकिन विशेषण तो यहाँ गुणत्व है और शब्द में तो गुणत्व रहता ही है, फिर आपने कैसे कहा तत् कथम विशेषणाभाव, फिर कैसे आपने कहा विशेषणाभाव है यहाँ पर, ताकि सत्यम अस्ति एव गुणत्वम, ये सत्य है कि इसमें गुणत्व है शब्द में, किंतु न तद विशेषणम, किंतु वह जो है वह विशेषण नहीं है। क्यों नहीं विशेषण है गुणत्व, ताकि तदेव ही हेतु विशेषणम भवति, वही हेतु जो है विशेषण होता है, मान विशेषण के योग्य होता है, यत अन्वय व्यवच्छेदेन प्रयोजनवत्, जो कि अन्वय व्यवच्छेद, अन्वय व्यतिरेक सुना होगा आपने पहले, माने तत्सत्वे तत्सत्ता इति अन्वय, तदभावे तदभाव इति व्यतिरेक, माने उसके रहने पर उसका होना, उसके न रहने पर उसका न होना, यही है अन्वय व्यवच्छेद। ताकि अन्वय व्यवच्छेद के द्वारा जिसका प्रयोजन सिद्ध होता है वही विशेषण माना जाता है। यहाँ गुणत्व जो है वह निष्प्रयोजन है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है, अतः असमर्थम इति उत्तम, इसीलिए इसको जो है असमर्थ विशेषणासिद्ध नाम का हेतु कहा गया। तात्पर्य ये है कि यहाँ पर यद्यपि शब्द में गुणत्व रहता है, किंतु वह जो गुणत्व जो है यहाँ पर विशेषण के रूप में जो है वह सच विशेषण के रूप में वो शब्द में नहीं रहता है, इसीलिए उसको हम विशेषणासिद्ध मानते हैं। इस तरह का आज का पाठ रखते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे।